हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। करण गंदी सी मुस्कान के साथ। उप्स, आराम से भाभी जी। नम्या गुस्से से, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, यूजलेस कहीं के, जाओ जाकर दोबारा पानी लेकर आओ। आरना नम्या की बातों को पूरी तरह इग्नोर करके वहाँ से जाने लगी। नम्या गुस्से से आरना का हाथ पकड़कर, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? आरना झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए, मैं तुम्हारी पर्सनल नौकर नहीं हूँ, गुस्से से करण की तरफ देखकर। ये तुम्हारा फिजूल है और आई थिंक तुम्हारी इस लंबी जुबान के साथ ही तुम्हारे हाथ भी बिल्कुल सही सलामत है, तो जाकर खुद ले आओ। इतना कहकर आरना वहाँ से ऊपर अपने कमरे में चली गई। नम्या गुस्से से उबलते हुए उसे खा जाने वाली नजरों से देखती रह गई। दूसरी तरफ आरना कमरे में पहुंचकर गुस्से से करण की हरकत के बारे में सोच रही थी। अचानक ही कमरे में टहलते हुए उसकी नज़र रिदांश के एक फ़ोटो पर पड़ी जो बेड के साइड टेबल पर रखा था। ये फ़ोटो इस कमरे में पहले दिन से ही था, लेकिन आरना ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, या यूं कहें कि उसे इतना वक्त ही नहीं मिला था कि वो इस तरफ ध्यान दे पाती। रिदांश से तो आज तक उसने नज़र उठाकर भी नहीं बात की थी, जिससे वो उसके बारे में कुछ नोटिस भी कर पाती। आरना जब उस फ़ोटो के करीब जाकर उसे गौर से देखती है तो हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। आरना हैरानी से अपना सर ना मिहलाते हुए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मिस्टर अग्निहोत्री की आंखें, ये आंखें तो बिल्कुल उस न्यू ईयर ईव वाले शख्स की तरह ही हैं। इसका मतलब क्या उस दिन वो सब मेरा वहम नहीं था और वाकई में वहाँ पर मिस्टर अग्निहोत्री ही थे? अगर वो इंसान मिस्टर अग्निहोत्री ही थे तो आज तक उन्होंने इस बात का कभी जिक्र क्यों नहीं किया, सोचते हुए। लेकिन मिस्टर अग्निहोत्री अगर उस रात मिले तो फिर वो शख्स कौन है जो मुझे मैसेज करके उस रात की तरह खुद को मेरी डेस्टिनी कह रहा है? नहीं, मिस्टर अग्निहोत्री वो इंसान कभी नहीं हो सकते। मुझे याद है अच्छे से आज भी कि उस शख्स की आंखों में कितनी सॉफ्टनेस थी, जबकि मिस्टर अग्निहोत्री की तो बातें ही तीर की तरह छलनी करने वाली होती हैं। और फिर ऐसी आंखें तो दुनिया में जाने कितने लोगों की होती होंगी, पर वो जो भी है और मुझे मैसेज कर रहा है, वो आखिर में है कौन और मुझसे चाहता क्या है? अपना सर पकड़ते हुए, हे भगवान, सब इतना उलझा हुआ क्यों है मेरी जिंदगी में? आरना ये सब सोच ही रही थी कि उसके फोन पर एक नए नंबर से कॉल आती है। कुछ देर सोचने के बाद उसने आखिर में कॉल पिक की। कॉल पिक करने के बाद उसे पता चला कि दूसरी तरफ राहुल है। आरना, राहुल ये नंबर किसका है? तू मुझे इससे कॉल क्यों कर रहा है? राहुल नाराजगी से, तो क्या करता मैं, आखिर इतने दिन से तूने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ है। आरना हैरानी से, मैं क्यों तेरा नंबर ब्लॉक करूंगी? राहुल, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं तुझे कॉल करने और बात करने के लिए कितना परेशान हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। आरना, क्या हुआ राहुल, सब ठीक तो है ना? राहुल, वो सब मैं तुझे मिलकर ही बताऊंगा, तू मुझे आज मिल सकती है ना? हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। राहुल, ठीक है फिर, तू मुझे उसी कैफे में मिल जहाँ अक्सर हम जाया करते थे। आरना, लेकिन घर क्यों नहीं? क्योंकि घर पर अंकल है और मुझे तुझसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। आरना, ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में पहुँचती हूँ। राहुल, ओके, मैं भी बस पहुँचता हूँ। फोन रखने के बाद आरना अपना बैग लेकर घर से निकलने लगी। मेन दरवाजे पर जाकर चौकीदार ने उसे दरवाजा खोलने से मना कर दिया। आरना, दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर जाना है। गार्ड, सॉरी मैडम, लेकिन सर ने आपको उनकी इजाज़त के बगैर यहाँ से बाहर जाने के लिए सख्त मना किया है, और अगर आपको फिर भी जाना है तो आप एक बार सर की इजाज़त ले लीजिए। आरना गुस्से से, मैं तुम्हारे सर की कोई गुलाम नहीं हूँ जो उनके इशारों पर नाचूं। अभी के अभी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। गार्ड, सॉरी, पर आप कुछ भी कहें मैडम, लेकिन हम ये दरवाज़ा नहीं खोल सकते। काफी देर बाद भी जब गार्ड ने दरवाज़ा नहीं खोला तो आखिर में हार कर आरना गुस्से से अंदर चली गई। अपने कमरे में जाकर उसने गुस्से से अपना बैग सोफे पर पटक कर इधर उधर चक्कर लगाने लगी। कुछ देर बाद ही रिदांश ऑफिस से घर आया। जैसे ही वो कमरे में आया, आरना उसके सामने आकर खड़ी हो गई। लेकिन उसका चेहरा और पहली बार उसकी आंखें देखकर एक बार फिर आरना का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो अपनी नजरें दूसरी दिशा में करके गहरी सांस के साथ खुद को नॉर्मल करने और खुद को आत्मविश्वास से भरने की कोशिश करने लगी। आखिर में बिना अटके बोलना शुरू कर दिया, हालांकि ऐसा करते हुए वो अंदर से पूरी हिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ रिदांश पहली बार आरना को बिना अटके खुद से बातें करते देख हमेशा की तरह ब्लैंक एक्सप्रेशन लिए उसे ही घूर रहा था। आरना, पूरी हिम्मत बटोर कर, आपने मेरे बाहर जाने पर पाबंदी क्यों लगाई? रिदांश फुल एटीट्यूड से, और मेरा जवाब है कि मैं तुम्हें जवाब देना बिल्कुल जरूरी नहीं समझता। नाउ गेट आउट ऑफ माई वे। आरना, गहरी सांस के साथ खुद को इनकरेज करते हुए, आपने ही मेरे फोन में राहुल का नंबर ब्लॉक किया ना मिस्टर अग्निहोत्री। मैं आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ, ना ही आप मेरी जिंदगी को ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। और आरना अचानक ही रिदांश को धीरे धीरे अपने करीब कदम बढ़ाते देख बोलते बोलते बीच में ही रुक गई। अपने कदम पीछे लेते लेते वो कब बाथरूम के दरवाजे तक आ गई उसे पता ही नहीं चला। जैसे ही वो एक कदम और पीछे हुई, बाथरूम का दरवाजा खुला होने से आरना के पीछे होने की वजह से दरवाजा पीछे की तरफ धकेल गया और आरना के कदम लड़खड़ा गए। लेकिन उसके गिरने से पहले ही रिदांश अपनी मजबूत बाहों को उसकी पतली कमर के इर्द गिर्द जमा कर उसे अपनी तरफ खींचकर अपने करीब कर लिया। और बस इसी पॉइंट पर आकर हर बार की तरह वो एक बार फिर कमजोर पड़ गई। रिदांश सर्द आवाज में, हाँ तो माई डियर वाइफी, क्या कह रही थी तुम? एक पल को रुककर, यस, मैंने ही ऑर्डर दिया था कि तुम्हें मेरी इजाजत के बिना यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाए। और हाँ, मैंने ही तुम्हारे उस सो कॉल्ड दोस्त का नंबर भी ब्लॉक किया। आरना हैरानी से, लेकिन क्यों? रिदांश, क्योंकि तुम दुनिया की नजरों में मेरी वाइफ हो और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी वाइफ किसी भी ऐरे गैरे से यूं ही गले मिलती रहे। भले ही इस दुनिया में तुम्हारी कोई रेपो ना हो, लेकिन मेरी बहुत है। ये सुनकर आरना के चेहरे पर नाराजगी के भाव उभर आए। कुछ पल को वो यही भूल गई थी कि वो इस पल कहाँ खड़ी है। आरना नाराजगी से, वो मेरा दोस्त है और आपको कोई हक नहीं मेरी जिंदगी के फैसले करने का या उसे कंट्रोल करने का। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको अपनी लाइफ पर यूं कंट्रोल करने दूंगी तो आप गलत सोचते हैं। रिदांश इविल मुस्कान के साथ, ओ रियली? अपनी उंगली आरना के गालों पर फिराते हुए, और तुम्हें वाकई में लगता है डार्लिंग कि मेरे सामने तुम्हारा तुम पर कंट्रोल होता है? आरना के कान के पास जाकर धीरे से, अब तुम जानबूझकर अनजान बनना चाहती हो तो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे इस वक्त बेतहाशा धड़कते इस दिल की हकीकत हम दोनों ही अच्छे से समझते हैं। आरना अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर अटकते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिदांश ईविल मुस्कान के साथ आरना के चेहरे को अपनी तरफ करके, लेट्स सी वाइफी।
इतना कहकर रिदांश आरना के कुछ समझने से पहले ही अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। अपनी पकड़ आरना की कमर पर और भी मजबूत करते हुए उसे अपने और भी करीब कर लेता है। ये महसूस करते ही आरना का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। कुछ पल तक वो बिल्कुल किसी पत्थर की तरह स्तब्ध रह जाती है, लेकिन कुछ पल बाद ही जब वो रिदांश की सांसों की महक और उसके होंठों की गर्माहट को अपने होंठों पर महसूस करती है तो एक अलग ही एहसास के साथ वो अपनी आंखें मूंद लेती है। उसे बिल्कुल एहसास ही नहीं होता कि कब उसकी बाहें रिदांश की गर्दन के इर्द गिर्द लिपट जाती हैं और कब वो रिदांश की किस का जवाब उसे खुद वापस किस करके देने लगती है। उसे एहसास ही नहीं रहता कि आखिर में कब वो पूरी तरह रिदांश के साथ इस लम्हे में खो चुकी थी।